On behalf of my Guru Maharaj, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, all of the previous acharyas and the assembled devotees, would like to welcome all of you to this most auspicious occasion where we have come together to hear the absolute truth according to Bhagavad Gita and chant the holy names of the Lord. The chanting of the holy names of the Lord is the Yuga Dharma in this age of Kali Yuga. And the beginning and the end of all spiritual functions in this age of Kali should be the kirtan of the holy name. This week, throughout India and the world, religious-minded people have been celebrating Dasera, which is the day when we celebrate victory of truth over illusion.
Srila Prabhupada ji ki or se, purvarti acharya ki or se, aur sabhi upasthit bhaktajanon ke or se, aaj main, arthat Srila Maharaj, aap sabhi ka is संध्या पर स्वागत करते हैं। आज आप सभी इस शुभ अवसर पर परम सत्य के विषय में सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि भगवत गीता में बताया गया है। युग नाम युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन सभी कार्यों की शुरुआत और अंत है।
Real victory means to conquer ignorance.
सही विजय है अज्ञान पर विजय पाना।
And this is the essence of this most holy day, Dasera.
और दशहरा के शुभ दिन का यही सार है।
Ignorance is the misconception of our identity.
अज्ञान हमारी चेतना का भ्रष्ट स्वरूप है।
We are all eternal spirit souls.
हम वास्तव में जीवात्माएं हैं।
And the nature of every soul is pure love for God.
और प्रत्येक आत्मा का स्वभाव भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम दिखलाना है।
Because the soul is part and parcel of the Supreme Godhead.
क्योंकि परम भगवान का जीवात्मा अंश है।
The Supreme Personality of Godhead has three primary energies.
परम भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं।
The spiritual energy, the material energy, and the marginal energy.
आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और भौतिक शक्ति।
The spiritual energy is where everything is eternal, full of knowledge and full of happiness, Satchit Ananda.
आध्यात्मिक शक्ति वह है जहाँ हर चीज सत, चित और आनंद है।
Where everything is conscious of its relationship with Krishna.
जहाँ पर हर वस्तु भगवान कृष्ण के प्रति अपने संबंध के बारे में जानती है।
The material energy is that manifestation coming from God by which everything is temporary.
भौतिक प्रकृति भगवान से आने वाली वह अभिव्यक्ति है जिसमें हर वस्तु अस्थाई होती है।
Subjected to birth and death.
और जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसी रहती है।
Material energy is unconscious.
भौतिक प्रकृति अचेतन है।
And the spirit soul, which is the true identity of every living entity, is the marginal energy.
जो जीवात्मा जो कि प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक मूल स्वरूप है वह जीव शक्ति है।
By constitution of the same nature as God Himself, eternal, full of knowledge and full of bliss.
और भगवान के समान ही यह शाश्वत पूर्ण ज्ञानमय और आनंद से परिपूर्ण है।
Because the infinitesimal spirit soul has free will, it has the independent choice to be either controlled by the spiritual energy or the material energy.
जो कि जीवात्मा अणु स्वरूप है, अतः इसकी इसके पास स्वेच्छा होती है कि वह या तो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित की जाए या फिर भौतिक शक्ति के द्वारा.
When one chooses to serve the material energy, one comes under the illusion of Maya or ignorance.
जब कोई भौतिक प्रकृति की सेवा करने की इच्छा करता है, तब वह माया या अज्ञान के प्रभाव में आ जाता है.
Maya literally means that which is not.
माया का वास्तविक अर्थ है जो नहीं है वह.
When we come under the control of this Maya Shakti, we think that we are this body.
जब हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम यह शरीर हैं.
And that happiness is to enjoy the pleasures of the body and the mind.
और जीवन में सुख अर्थात अपने शरीर और इंद्रियों को भोग करना है.
कृष्ण explains in Gita, भूमि रपो नलो वायु खमनो बुद्र एवचा अहंकारा इतिया में भीन पकित रष्टता. That material energy is comprised of 8 basic elements: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and the false ego.
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि यह भौतिक प्रकृति 8 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार.
अपरेयमिताश्वान्याम प्रकृतिम विरिमे परम जीवभूत महाबाहो यगेदम धार्यते जगत. But beyond these 8 material elements is the spirit soul, which is part of Krishna, eternal and full of bliss.
और इन 8 तत्वों के परे जीवात्मा है, जो कि वास्तव में सच्चिदानंद है.
The soul's very nature is to love.
आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम करना है.
And when that love is directed toward Krishna, that is the natural position of the soul by which it finds true happiness, eternal happiness.
जब प्रेम को भगवान की ओर लगाया जाता है, तब वही आत्मा का मूल स्वभाव है और उसके माध्यम से ही आत्मा को सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है.
But when that same propensity to love and to experience bliss is directed toward this body or the objects of the senses in relationship to this body, then the spirit soul forgets its true quality of eternality and identifies with the body which is subjected to the power of time.
जब आत्मा अपनी प्रेम की प्रवृत्ति को अपने शरीर अथवा शरीर के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लगाती है, तब वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है और भौतिक प्रकृति के जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है.
And real freedom means freedom from this illusion that I am this body.
वास्तव में मुक्ति का सही अर्थ है कि इस भ्रम से छुटकारा पाना कि मैं शरीर हूं.
And to engage again in one's natural propensity of serving God.
और अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति में लगना, जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं.
Everyone is seeking freedom from suffering.
सभी कोई दुखों से छुटकारा करने का प्रयास कर रहे हैं.
But in this age of Kali Yuga, unfortunately, people have forgotten the process.
लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग सही विधि को भूल गए हैं.
They are thinking that by some sort of political freedom, people will be happy.
वो सोचते हैं किसी राजनीतिक स्वतंत्रता से हमें मुक्ति मिलेगी.
This great land of Bharatvarsha, India, at one time it was under Mughal rule, and then you became free from that. Another time it was under British rule, and there was so much fighting and so much dedication to the cause, and you became free from them. But is everyone in this country dancing in ecstasy, happy and free from suffering because the British are gone?
तो भारत भूमि जो कि एक महान भूमि है, कभी मुगलों के अधिपत्य में थी
ऑफिस स्वतंत्र हो गई। उसके बाद ब्रिटिश रूल आया और उस समय हम परतंत्र थे। कुछ समय बाद ब्रिटिश भी चले गए, लेकिन क्या आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हम नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और हमें सही प्रकार का सुख प्राप्त है?
Similarly, the people under communism were greatly oppressed and they kicked out the communist government in Russia. But are the people any happier now?
रशिया में जो कि समाजवादी सरकार है उसको लोगों ने उखाड़ा फेंका है, तो भी क्या रशिया में लोग सुखी हैं?
The real causes of suffering are janma mrityu jara vyadhi dukha doshano darshanam. Birth, old age, disease and death.
दुख का वास्तविक कारण जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार प्रकार के दुख हैं।
And the cause of all these sufferings is our own forgetfulness of our eternal nature.
और सारे दुखों का मूल कारण हमारे हमारी वास्तविक स्वभाव की याददाश्त को भूल जाना है।
So this is real victory. This is real success.
तो वास्तविक विजय है अपनी स्मृति को वापस लाना।
एंड द सुप्रीम लॉर्ड डिसेंड्स इनटू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन टू टीच अस द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ।
और भगवान इस भौतिक संसार में बार बार अवतार लेते हैं यह बताने के लिए कि किस प्रकार से हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।
हरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थपनार्थाय संभवामि युगे युगे। The Lord comes again and again to re-establish the true principles of religion.
भगवान बार बार धर्म के सही सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं।
To give pleasure to his devotees and to annihilate the representatives of ignorance.
और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अज्ञान का प्रतीक जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नाश करने के लिए।
And we read in the scriptures many histories within this world in which the Lord has revealed his mercy upon all forgetful souls.
और हम अपने शास्त्रों के इतिहास में पाते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है जब भगवान ने अपनी कृपा बद्ध जीवात्माओं पर दिखलाई है।
रावणा was a great empowered representative of Maya.
रावण माया का एक बड़ा प्रतिनिधि था।
He wanted to take the property of God, Sita, and enjoy it for himself.
वह भगवान की संपत्ति सीता देवी का खुद भोग करना चाहता था।
This is called illusion.
यही भ्रम है।
Everything within this world is the property of God.
इस संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है।
Everything is meant for the pleasure of God.
और सभी कुछ भगवान के संतोष के लिए बना हुआ है।
When we try to enjoy anything for our own mental and physical sense enjoyment, then we are simply taking the position of little Ravanas.
जब हम कोई किसी वस्तु को अपने मानसिक अथवा शारीरिक सुख के लिए प्रयोग करते हैं तब हम रावण की स्थिति को ही स्वीकार कर रहे हैं।
But the big, big Ravanas, they cause suffering to so many people.
जो बड़े बड़े रावण होते हैं वो बहुत लोगों को कष्ट देते हैं।
And his power was so great that even the Devatas had to pray to the Supreme Lord because they had no power over the force of Maya.
और जब रावण का प्रभाव इतना बड़ा हुआ था कि देवता लोग भी प्रार्थना करते थे।
So Lord Ramchandra appeared in this world.
तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस संसार में प्रकट हुए।
And with his mighty bow and arrow, he pierced the heart of Ravana and freed the world of the misery caused due to the influence of his ignorance.
तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने शक्तिशाली धनुष के माध्यम से रावण का हृदय चीर डाला और इस प्रकार से अज्ञान का जो प्रभाव था भौतिक संसार पर उससे सभी लोगों को मुक्त किया।
In Bhagavad Gita, Krishna tells us, actually it is Sanjay who speaks, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion.
Bhagavad Gita mein Sanjay batate hain ki jahan bhi Yogeshwar Krishna hain aur mahan dhanurdhari Arjun hai, wahi par Shri Vijay और अत्यंत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और यही उनका मत है.
कृष्ण एक्सप्लेन्स इन गीता दैवि हेश गुणामायी ममा माया दुरात्यया मम एवं ये प्रपद्यन्ते मायम एतद्धरन्तिते. दैट दिस मटेरियल नेचर कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम.
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीताएं बताते हैं कि त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उसके पार जाना बड़ा कठिन है.
It is only when we surrender to Krishna that we can cross beyond it.
और जब हम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं तभी इसके पार जा सकते हैं.
This is the beginning of transcendental knowledge, to understand that under the power of Maya or illusion we are helpless.
दिव्य ज्ञान की ही शुरुआत है कि यह समझना कि हम माया के इस प्रभाव के नीचे पूर्ण रूप से लाचार हैं.
थ्रू द प्रोसेस ऑफ कर्म कांड ज्ञान कांड अष्टांग कांड वी मे बी एबल टू एलिवेट आवरसेल्व्स टू टेम्पररी रेजिडेंसेस ऑफ ग्रेट एंजॉयमेंट और वी मे इवन अचीव ग्रेट ग्रेट पावर्स विद इन दिस मटेरियल नेचर और वी मे बी टेम्पररीली in a condition of forgetting the miseries of this world, but to actually cross beyond this ocean of suffering, it is only by humbly taking shelter of the mercy of the Lord.
इस संसार में हम कर्मकांड, ज्ञानकांड अथवा अष्टांग योग के पालन से शायद उच्च ग्रहों में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर कुछ भौतिक शक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर कुछ क्षणिक समय के लिए मुक्ति की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं. लेकिन वास्तव में मुक्ति अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है.
दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन हाउ टू फाइंड शेल्टर इन द मर्सी ऑफ कृष्ण.
सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि किस प्रकार से हम भगवान का आश्रय स्वीकार कर सकते हैं.
व्हेन वी स्पीक ऑफ कृष्णा वी मीन द एब्सोल्यूट ट्रूथ, the cause of all causes, the supreme personality of Godhead.
जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण शब्द का अर्थ है परम सत्य, सभी कारणों के कारण परम भगवान.
There is a story in Srimad Bhagavatam of a great personality who found himself in the body of an elephant. His name was Gajendra.
श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है जिसमें एक ऐसी जीवात्मा का उल्लेख है जो एक हाथी के शरीर में थी.
गजेंद्र रिप्रेजेंटेड इन हिज लाइफ ए मैन ऑफ ग्रेट सक्सेस इन द वर्ल्डली सेंस.
गजेंद्र वास्तव में इस बात का प्रतीक था कि भौतिक सफलता क्या होती है.
ही लिव्ड इन एन एरिया कॉल्ड त्रिकुटा and there he was the king of all living beings.
वह त्रिकुट नाम के जगह पर रहता था और सभी जीव जंतुओं का राजा था.
He had tremendous power and influence.
उसकी बड़ी बड़ी शक्ति थी.
And a wonderful family as well.
और उसके पास एक बहुत सुंदर परिवार भी था.
And wherever he would walk in the jungles, everyone would respect him with great honor.
जब भी वो जंगल में जहां भी जाता था सभी लोग उसका बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत करते थे.
And anyone who had any evil motives feared him like death.
और जिनकी भी कोई बुरी भावना होती थी उससे बड़े ही भयभीत रहते थे.
So he was very happily enjoying for many years his nice position.
तो बहुत समय तक वह अपने इस अच्छी स्थिति का भोग कर रहे थे.
And one day he went with his beautiful wives and his children and his friends on a holiday to take bath in a beautiful clear pond filled with lotus flowers.
और एक दिन अपनी सुंदर पत्नी और बच्चों के साथ वो एक छुट्टी के समय एक बहुत ही सुंदर गुलाब के कमलों के पुष्पों से भरे हुए सुंदर कुंड में स्नान करने के लिए गए.
It appeared to be like any other day to enjoy this most romantic and charming atmosphere.
वह दिन दूसरे ही आनंददायी क्षणों के समान, मनोहारी क्षणों के समान ही प्रतीक हो रहा था.
And while he was in the water, just to make his family members happy, he was splashing them with water.
और उस कुंड में वो स्नान करते समय अपने परिवार के लोगों पर पानी उड़ा रहा था और आनंद ले रहा था.
And in the least expected moment, a terrible crocodile attacked Gajendra and entrapped his leg with his sharp teeth.
और एक बिना किसी विचार की हुई क्षण में एक बहुत ही एक बड़े मगरमच्छ ने अपने नुकीले दांतों से उसका पैर पकड़ लिया.
This was a very painful situation, and Gajendra, with all his strength, he began to fight.
यह बड़ी ही दुखदायक स्थिति थी और गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगा.
But the crocodile would not let go.
और वो लेकिन मगरमच्छ उसको छोड़ नहीं रहा था.
And then Gajendra looked toward his family members and his friends and his supporters, and they wanted so bad to help him, but there was nothing they could do.
उसके बाद गजेंद्र ने अपने परिवार मित्रगणों की ओर देखा तो वो उसकी सहायता करने के लिए बड़े लालायित थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे.
There was a great battle that lasted for 1,000 years.
मगरमच्छ और गजेंद्र के बीच में जो युद्ध हुआ वो 1,000 वर्षों तक चलता रहा.
Sometimes Gajendra would try to bring the crocodile out of the water, then the crocodile would drag him back into the water.
कभी गजेंद्र मगरमच्छ को पानी के बाहर खींचते थे, उसके बाद कभी मगरमच्छ उनको पकड़ के पुनः फिर से पानी में ले जाते थे.
And Gajendra was getting weaker and weaker, and the crocodile was getting stronger.
और समयांतर में गजेंद्र कमजोर होते जा रहे थे और मगरमच्छ शक्तिशाली बनता जा रहा था.
Because crocodiles, their natural place is water.
क्योंकि मगरमच्छ का स्वभाव पानी में ही रहना है.
We are all in this situation.
हम उसी प्रकार की स्थिति में फंसे हुए हैं.
We are all in the jaws of material nature.
हम भौतिक प्रकृति के जबड़ों में फंसे हुए हैं.
And it is impossible for us to escape.
और बहुत ही असंभव है इसके चंगुल से बाहर निकलना.
Because Maya is more powerful than us.
क्योंकि माया हमसे अधिक शक्तिशाली है.
This is Devi Dham. This is the planets of Maya. It is where Maya is king.
इन लोगों में देवी का धाम है और यहाँ पर देवी का ही राज्य, माया का राज्य चलता है.
Therefore, we are in a hopeless condition like Gajendra.
अतः हम गजेंद्र के समान ही असहाय परिस्थिति में हैं.
But in this situation, where he was suffering such terrible, unbearable pain, and he was on the verge of extinction, at that time, he remembered the devotional service he performed in his previous life.
और जब वह ऐसी दुखदायक परिस्थिति में था और वह समाप्त ही होने वाला था, तभी उसने अपने पूर्व जन्म में किए हुए भक्ति का स्मरण किया.
And he began to remember Krishna.
और वो भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगा.
He began to chant the holy name of Krishna.
वो कृष्ण भगवान के नामों का जप करने लगा.
And Krishna is none different than his name.
और कृष्ण भगवान अपने नाम से अभिन्न है.
And Krishna is seated in everyone's heart.
और भगवान कृष्ण प्रत्येक के हृदय में बैठे हुए हैं.
As soon as we turn to Krishna sincerely and call out for his mercy, he will certainly come and deliver us.
जब हम भगवान की ओर गंभीरता से मुड़ते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं तब निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करते हैं.
We should know that the jaws of time are controlling all of us, like this crocodile.
हमें मालूम होना चाहिए कि समय का जो जबड़ा है हमें उसी प्रकार से नियंत्रित कर रहा है जैसे वो मगरमच्छ था.
It is just a matter of time till everything lost and death come upon us.
यह थोड़े समय की ही बात है कि मृत्यु हमारे निकट आने वाली है.
And everyone fears death.
और सभी को मृत्यु से भय लगता है.
Death for our own body and death for those we love.
इस शरीर की मृत्यु और उन सभी लोगों की मृत्यु जो हमारे प्रिय हैं.
We fear death because it is an unnatural condition for the soul, which is eternal.
हम मृत्यु से भयभीत इस कारण हैं क्योंकि यह आत्मा के लिए बड़ी ही अस्वाभाविक स्थिति है क्योंकि वास्तव में आत्मा तो शाश्वत है.
न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the body there is death, but for the soul there can be no death.
शरीर के लिए मृत्यु है लेकिन आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं.
When we realize we are not this body, there is no more death.
जब हम यह जान लेते हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं, तब मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता.
But the grip of this crocodile of illusion is so strong we cannot get out of this conception that we are this body.
लेकिन यह इस मगरमच्छ का जो भ्रमपूर्वक प्रभाव है इतना शक्तिशाली है कि हम इसके बाहर ही नहीं निकल पाते.
And therefore so much suffering in life.
और इस कारण जीवन में बड़ा दुख है.
But Gajendra has shown us the process. We must helplessly humble ourselves to understand that there is no shelter except Krishna.
लेकिन गजेंद्र ने हमें मार्ग बताया है वह यह कि असहाय भाव से भगवान की शरण स्वीकार करना.
And with great, great effort, because he was in such a difficult situation, with his trunk, he plucked a beautiful lotus flower and raised it in the air to offer it in devotion to the Lord while chanting his names.
और उस कठिन परिस्थिति में भी उसने अत्यंत प्रयास करते हुए अपनी सूंड से एक कमल पुष्प को तोड़ा और उसको हवा में ऊपर उठाया और भगवान के नामों का जप करते हुए भगवान को अर्पित किया.
At that very moment, the Supreme Lord Vishnu very, very quickly descended on his bird carrier Garuda.
और उसी समय बहुत ही तीव्रता के साथ विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी के साथ वहां पर अवतरित हुए.
And with his own lotus hand, he pulled Gajendra and the crocodile onto the land.
और फिर उन्होंने अपने कमल हस्तों से गजेंद्र और मगरमच्छ को पानी के बाहर निकाला.
And with his chakra, he cut the mouth of the crocodile and killed it.
और उसके बाद उन्होंने अपने चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट दिया और उसको मार डाला.
He gave liberation to the crocodile as well. And Gajendra, due to being touched by the Lord, he assumed his original spiritual body and immediately was transferred back to Vaikuntha, the eternal abode of the Lord.
उस मगरमच्छ को भगवान ने मुक्ति प्रदान की लेकिन चूंकि गजेंद्र को भगवान ने स्पर्श किया था अतः तुरंत गजेंद्र को अपना मूल स्वरूप प्राप्त हुआ और वह शाश्वत धाम वैकुंठ में वापस गया.
This is real victory.
यही वास्तविक विजय है.
Wherever those people surrender to the Lord by helplessly calling out his name, those people will achieve victory over the crocodile of death.
जो लोग असहाय भाव से भगवान के नामों की शरण स्वीकार करते हैं उन्हीं को इस माया के मगरमच्छ से मुक्ति प्राप्त होगी.
And this is the real aim of the human form of life.
और यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है.
To realize that we are meant to enjoy eternal bliss in the spiritual world.
और यह जानना कि हमें भगवान के धाम में शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है.
And the spiritual world is within the heart of every living being.
और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आध्यात्मिक धाम है.
Dasera is the day when we come together to seek shelter of the mercy of the Lord and be victorious in this world.
दशहरा वह दिन है जहां भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं और भवानी कृपा को प्राप्त करके इस जीवन में विजय को प्राप्त करते हैं.
If we sincerely remember Krishna, hear his glories and chant his names, our life will undoubtedly be a success.
यदि हम गंभीरता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करेंगे और उनके गुणों का गुणगान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में सही सफलता प्राप्त होगी.
We must give up our faith in all of our material endeavors.
हमें अपनी सारे भौतिक प्रयासों से अपने विश्वास को त्याग देना चाहिए.
Material endeavors have their limitations.
भौतिक प्रयासों की सीमा होती है.
We may have our duties and we must perform our worldly duties according to whatever responsibilities we may have in this world. But we should know that this is not the aim of life. This is something that we may have to do. But our consciousness should be fixed always in pursuing real victory.
तो हमारे कुछ कर्तव्य कर्म होंगे और हमें उन कर्तव्य कर्मों को करना होगा, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि यह वास्तविक चीज नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में सच्ची सफलता को प्राप्त करना है.
And it is that knowledge and that process which His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has given to the whole world.
और यह वह ज्ञान है, वह विधि है जो कि His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada जी ने पूरे विश्व को दी है.
The Bhagavad Gita is the summary and the essence of all the Vedas.
भगवद गीता समस्त वेदों का सारांश और सार है.
And the conclusion of Gita is सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय यच्छामि मा शुचः. That we should surrender to Krishna.
और भगवद गीता का निष्कर्ष यह है कि हमें भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पित करना है.
With humility and devotion.
नम्रता और भक्ति के साथ.
This is the most perfect form of knowledge.
और यही सबसे पूर्ण ज्ञान का सबसे पूर्ण स्वरूप है.
In this age of Kali Yuga, the Supreme Lord Krishna appears as Lord Chaitanya, the Yuga avatar, to teach us the sublime method by which everyone can surrender to Krishna.
इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं हमें बड़ी ही दिव्य विधि को सिखाने के लिए जिसके माध्यम से हम भगवान को समर्पित हो सकते हैं.
Krishna has descended in his name.
भगवान कृष्ण अपने नाम में ही अवतरित हुए हैं.
By surrendering to Krishna's name, by remembering him through his name, we can find the same shelter that Gajendra experienced in his dilemma.
भगवान के नाम को अपने आप को समर्पित करते हुए, भगवान के नाम को स्मरण करते हुए हम उसी स्थिति को महसूस कर सकते हैं जो गजेंद्र ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके महसूस की थी.
By chanting Krishna's name, the Ravana within our heart will be slayed by the Lord.
भगवान के नामों के जप से हमारे हृदय में जो रावण है वो भगवान के द्वारा मारा डाला जाएगा.
When Srila Prabhupada went to the Western world, he had only about 30 rupees.
जब श्रील प्रभुपाद पश्चिम देशों में गए तो उनके पास शायद 30 रुपए बस थे.
He had no friends or supporters.
उनके न कोई मित्र थे न ही कोई सहयोगी थे.
He did not even have a fixed place of residence.
उनका एक रहने का निश्चित स्थान भी नहीं था.
And he was 70 years old.
और वह 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति थे.
He crossed the Atlantic Ocean on the boat Jaladuta.
और उन्होंने अटलांटिक सागर को एक जलदूत नामक जहाज पर पार किया था.
New York City is one of the capitals in the kingdom of Maya.
माया के राज्य में न्यूयॉर्क एक बड़ी राजधानी के समान है.
Big, big, tall stone buildings everywhere.
बड़ी बड़ी इमारतें सब जगह दिखलाई पड़ती हैं.
10 million people just pushing each other and crowding each other, trying to get more and more money and prestige.
1 crore लोग एक दूसरे के खींचते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, केवल अधिक से अधिक पैसे को प्राप्त करने के लिए.
And in this massive phenomena of material illusion, there was one little old Indian man, Srila Prabhupada, who came to declare war against material energy.
और इस भौतिक प्रकृति के भयंकर स्वरूप में एक साधारण से मनुष्य श्रील प्रभुपाद जी माया के खिलाफ युद्ध करने के लिए आए थे.
And he only had one weapon.
और उनके पास केवल एक ही शस्त्र था.
His faith that Krishna is none different than his name.
उनका यह विश्वास कि भगवान अपने नाम से अलग नहीं है.
And that Krishna is all merciful and all powerful.
और भगवान परम दयालु और परम शक्तिशाली हैं.
And gradually, more and more living beings, fortunate living beings, became blissful and liberated by raising their arms and loudly chanting the holy names of Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और समयांतर में बहुत सारी जीवात्माएं अपने हाथ ऊपर करके और भगवान के नाम का उच्चारण करके मुक्तावस्था को प्राप्त हुई हैं.
Srila Prabhupada taught us how to live our life so that every moment can be utilized to make progress on the spiritual path.
Srila Prabhupada ji ne hame yah vidhi sikhlai hai kis prakar se hum apne jeevan ke har kshan ka sadupyog bhagwan ki or jane ke liye kar sakte hain.
By remembering Krishna in everything we do and making every effort to dovetail all of our natural propensities in Krishna's service.
और हर क्षण भगवान का स्मरण करते हुए और हमारी जो भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाते हुए.
Whether one is a brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasi, a brahmin, kshatriya, vaishya, shudra, or someone from another land, these are all temporary designations. The only truth is that we are all part of God.
भले ही हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हों, या ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ हों, या फिर विदेश की भूमि से हों, ये सभी जो उपाधियां हैं, ये सब अस्थाई उपाधियां हैं.
So whatever our particular designation or our occupation may be, we must perform our duties in this understanding, that we are all eternally servants of Krishna.
तो हम जो भी अपने कार्य करते हैं, हमारी शायद अनेकों उपाधियां होंगी, लेकिन उसको न उसके ऊपर न ध्यान देते हुए हमें यह मानते हुए कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, अपने कार्यों को करना चाहिए.
And by regularly chanting Krishna's names, discussing Krishna's teachings and glories, the association of Krishna's devotees, we find ourselves closer and closer to the shelter of the mercy of the Lord.
और नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से और भगवान के भक्तों का संग करने से हम अपने आप को भगवान के निकट पाते हैं.
This was the great gift that Srila Prabhupada offered to the world.
और यही बड़ी महान भेंट थी जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण संसार को दी है.
And the Soviet Union, which is now Russia, at one time they considered that the Hare Krishna movement was the greatest threat to their illusion of communism.
जो रशिया सोवियत रूस जो पहले था अभी रशिया नाम से जाना जाता है वहां पर उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन को एक बड़े भयंकर भय के रूप में माना था उनके समाजवाद के प्रति.
Because when some of the top leaders read Srila Prabhupada's books, they felt, if people read these books, we are finished. They will kick us out.
तो कुछ समाजवादी नेताओं ने जब श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ा था तो उनको लगा था यदि लोग ये पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमको उखाड़ फेंकेंगे.
Because it is the truth.
क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने जो बताया वह सत्य है.
So we are all so greatly indebted to His divine grace for sacrificing His life to give us the shelter of Krishna.
तो हम श्रील प्रभुपाद जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाने के लिए.
And the greatest way to celebrate His glorious mission, especially during this year of His centennial, is to try to seriously understand His teachings and follow them.
और सबसे बड़ी सहायता जो हम कर सकते हैं उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वह यह कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार करें.
And it begins in the way we are sitting tonight, hearing what is truth, what is illusion.
और इसकी शुरुआत उससे होती है जैसे कि आज यहां पर हम सत्य क्या है और भ्रम क्या है उसके बारे में सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं.
And how to conquer illusion by humbly taking shelter of the Supreme Lord by chanting His holy names.
और किस प्रकार से हम भ्रम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नामों की शरण को स्वीकार करते हुए.
All of the power, all of the glory, all of the beauty and sweetness and charm of Krishna is within His name.
भगवान की संपूर्ण महिमा संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण शक्ति संपूर्ण सौंदर्य भगवान के नाम में समाया हुआ है.
Through regularly chanting, we gradually come to the stage of chanting offenselessly.
धीरे धीरे जप करते हुए हम एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जब हम बिना किसी अपराध के भगवान का नाम जप करते हैं.
When we once chant the holy name offenselessly, we will experience all the beauty and love of Krishna within our hearts.
और यदि हम एक बार भी बिना किसी अपराध के भगवान का नाम लेंगे तो हम अपने हृदय में भगवान के संपूर्ण सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं.
And that Krishna, who is all powerful, who is victorious over even the greatest asuras like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa and all others, he is conquered by the devotee who chants his name sincerely without offense.
अब भगवान जो कि परम शक्तिशाली हैं जो कि बड़े बड़े असुरों जैसे हिरण्यकशिपु और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं उनको भगवान के भक्त उनके नामों के जप के द्वारा जीत लेते हैं.
And this is the most confidential secret in all the scriptures.
और यही संपूर्ण शास्त्रों का सबसे गुप्त संदेश है.
That the all-powerful, omnipresent, omnipotent, supreme personality of Godhead, who controls everything through His energies, is conquered by the love of His devotee.
और वह क्या? वह यह कि जो सर्वव्याप्त परम शक्तिशाली भगवान हैं, वह अपने भक्त के प्रेम के द्वारा जीत लिए जाते हैं.
Today it is Sarat Purnima, the full moon of the beginning of the Kartik season.
आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक मास के शुरुआत की पूर्णिमा.
And this night, the gopis of Vrindavan, they left everything of this world only to please Krishna.
और आज की रात्रि को गोपियों ने अपने हर चीज को छोड़ दिया था केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए.
They were willing to not only sacrifice their own physical and mental securities, but they were willing to risk their lives just to please Krishna.
वह अपनी शारीरिक और भौतिक सुरक्षा का परवाह नहीं करते हुए उन्होंने अपने जीवन खतरे में डालते हुए भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया.
And they were not great warriors.
वे बड़ी योद्धा नहीं थी.
They were not great scholars.
और वे बड़ी विद्वान भी नहीं थी.
They were young ladies who just milked cows and did cooking.
वो जवान स्त्रियां थी जो कि रसोई बनाना और दूध दुहने का काम करती हैं.
They sometimes cleaned house and took care of children.
वो कभी घरों को साफ करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं.
But when they came to the Bamsiba tree on the bank of Jamuna in the forest of Vrindavan, they came with such pure unmotivated love that Krishna told them that I am conquered by your love.
लेकिन जब वो यमुना नदी किनारे वंशीवट में आई उस समय जब वो भगवान कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं आपके प्रेम के द्वारा जीत लिया गया हूं.
Although I am the proprietor of all material and spiritual worlds, I do not have enough wealth to pay you back what you deserve and what I owe you for the love you have given me.
और भगवान ने कहा कि मैं भले ही संपूर्ण विश्व का स्वामी हूँ, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से.
Krishna becomes the servant of those who worship him with love.
भगवान उसके सेवक बन जाते हैं जो भगवान की भक्ति भक्ति के साथ पूजा करते हैं.
The conclusion is that the ultimate power is bhakti, devotion.
तो निष्कर्ष यह है कि सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति.
Because it conquers even the supreme conqueror.
क्योंकि यह जो परम योद्धा है, परम विजय को प्राप्त करने वाले हैं, उनको भी जीत लेती है.
Krishna may have killed Kamsa, but he washed the feet of the Brahmin Sudama.
भले ही सुदामा के पैर धोए थे.
Narasingadev may have ripped Hiranyakashipu to pieces, but with tears in his eyes, he was willing to give anything and everything to his devotee Prahlad.
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया था, लेकिन वह अपनी आंखों में आंसू लिए हुए प्रह्लाद को उसी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिदान देने के लिए तैयार थे.
Some people have the illusion they could be God.
कुछ लोगों का यह भ्रम होता है कि वो भगवान बन सकते हैं.
This is impossible.
यह असंभव है.
But through devotion, God becomes your servant.
लेकिन भक्ति से भगवान आपके सेवक बन सकते हैं.
Not that we want God to be our servant.
इसका मतलब यह नहीं कि हम भगवान को अपना सेवक बनाना चाहते हैं.
We want to eternally serve the Lord and please the Lord. But Krishna takes so much pleasure in that service that he becomes subordinate to that love.
हम तो हमेशा भगवान की नित्य सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उस प्रेम के कारण इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो स्वयं भक्त के अधिपत्य में आ जाते हैं.
And it is that devotion, that love, that is the ultimate goal of life.
और यही प्रेम है जो कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है.
And that is what we achieve by taking to this wonderful movement of Krishna consciousness and feelingly and sincerely chanting the holy names of Krishna.
और इसकी प्राप्ति हम तब करते हैं जब हम इस हरे कृष्ण आंदोलन को गंभीरता से स्वीकार करते हैं और भगवान के नामों का गंभीरता पूर्वक जप करते हैं.
थैंक यू वेरी मच.
बहुत बहुत धन्यवाद.
एट दिस टाइम वी वुड लाइक टू इनवाइट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द वंडरफुल हरि नाम संकीर्तन मूवमेंट.
और अभी हम सभी को आमंत्रित करते हैं जो बहुत ही सुंदर हरि नाम संकीर्तन है उसमें भाग लेने के लिए.
There are two types of knowledge, gyan and vigyan.
Gyan ke do prakar hote hain, gyan aur vigyan.
Gyan means theoretical knowledge which comes by studying the books and hearing with our ears.
ज्ञान यानी सैद्धांतिक ज्ञान जो कि पुस्तकों को पढ़ने से प्राप्त होता है.
But when we actually practice the process, we get realization of that knowledge and experience.
लेकिन जब हम विधि का अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमें वास्तव में अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात विज्ञान.
If you are sick, the doctor tells you this is the medicine to take and writes prescription.
तो यदि आप बीमार हो तो डॉक्टर आपको कहता है कि ये दवाई ले लो और दवाई का नाम लिखकर देता है.
But if you do not take the medicine, there will be no real benefit.
लेकिन यदि हम दवाई को लेंगे नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा.
Similarly, we can sit through the pravachan, the lectures discussing spiritual philosophy and topics, but they are only so good in this age of Kali Yuga to the degree that they induce us to live a pure life, no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating, and chant the holy names with great sincerity.
तो सत्संग में आकर हम बैठ सकते हैं. देखिए उससे हमें केवल इतनी मिलनी चाहिए कि हम चार नियमों का पालन अर्थात मांसाहार न करना, नशा न करना, व्यभिचार न करना और जुआ इत्यादि न खेलना, ये करें और भगवान के नामों का जप करें.
Because it is through sincerely calling out Krishna's names we can have direct experience of the love and the mercy of Krishna.